नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी इसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर फेसबुक यूट्यूब पर ये देख रहे हैं आप हमारा विशेष कार्यक्रम। नाम है इसका संपूर्ण योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रनअप के रूप में 21 दिवसीय योग चैलेंज के तहत हम हर दिन योग को उसके अलग अलग स्वरूपों में उसके पूरे आयामों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय से एक विशेष पहल यही रही है कि इन 21 दिनों में हम योग के सारे बेनिफिट्स को जानें और उसको अपने जीवन में उतार सकें। इन 21 दिवसीय कार्यक्रमों में हर दिन हम एक एक दिन कुछ न कुछ आसन सीखते हैं, फिर योग के बारे में कुछ बोध हासिल करते हैं और आपके प्रश्नोत्तरों के लिए हम अलग सा एक सेगमेंट चलाते हैं जिसमें आप सवाल पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी के अभी, और लाइव उत्तर आपको इसी कार्यक्रम के दौरान मिलते हैं। इसके साथ साथ कार्यक्रम के अंत में 5 मिनट के लिए हम करते हैं राजयोग ध्यान यानी कि मेडिटेशन भी। तो पूरे कार्यक्रम को हम आधे पौने घंटे में समाप्त करने का प्रयास करते हैं हर दिन। तो आइए आज की भी हमारी योग की यात्रा शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के योगासन से। तो आप भी हमारे साथ हो जाइए तैयार और साथ साथ मिलकर करते हैं योगासन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में पहले 10 मिनट करते हैं योगासन।
ओम शांति, वंदे मातरम। आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। परमात्मा के शरण में ये प्रार्थना रखता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे, पूरा भारत और पूरा विश्व स्वस्थ रहे। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में थोड़ा सुन लेंगे। प्राणायाम तो सबको आता है, नाड़ी शोधन माना अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेकिन उसके पीछे का जो विज्ञान है वो थोड़ा समझ लोगे तो प्राणायाम करने में आपको आसानी रहेगी। हमारे शरीर में अगर केवल कैपिलरीज भी देखे, कैपिलरीज माना केशवाहिनियां होती है बालों से भी पतली, जैसे आप अभी आपके पड़ोस में बैसे किसी व्यक्ति की आंखें बड़ी करके उसके अंदर देखेंगे बारीक बारीक नसें हैं, उसको कैपिलरीज कहते हैं। किसी व्यक्ति के पैर के पीछे बारीकी से आप देखेंगे तो बारीक बारीक नसें देखने में आएगी, और बहनों के पैर में तो पीछे आपको नीले रंग की, हरे रंग की, लाल रंग की नसें देखने मिलेंगी। ये सारी कैपिलरीज हैं, ये 2 अरब है कम से कम। फिर नस नलिकाएं जो है, शिरा है, धमनियां है, उनका कुल व्याप अगर इन सबको एक लाइन में जोड़े तो पृथ्वी के 2 चक्कर लग सकते हैं। इतनी नस नालियों का व्याप केवल एक छोटे से शरीर में भगवान ने डाला है, कहां कहां कैसी कैसी पाइपलाइन डाली है। तो देह विद्युत ऊर्जा शरीर को चलाने के लिए जो बहती है पूरे शरीर में, उसको नियंत्रित करने का काम जो है वो अनुलोम विलोम करता है। इससे व्यान वायु सक्रिय रहता है, व्यान वायु का कब्जा पूरे शरीर पर होता है और व्यान वायु सक्रिय हो जाता है। अनुलोम विलोम बेसिकली हमारी 3 नाड़ियां जो है उसको उसके साथ संबंधित है। लेफ्ट वाली जो है चंद्र नाड़ी है, राइट वाली सूर्य नाड़ी है, ये ईडा है, लेफ्ट वाली ये पिंगला है, और दोनों जहां पर मिलती है ये अग्नि की नाड़ी है, सुषुम्ना जिसको कहते हैं। अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर की जो विध्रुवीय रचना है, 2 पार्ट में शरीर बटा है, उसके विद्युतकीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें, आपके मकान में आप जहां पर बैठे हो उसके भी 3 फेज हैं। उसका एक फेज आपने जमीन में गाड़ दिया है, समझो कभी बिजली गिरती है या कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो एडिशनल बिजली जो है वो जमीन में चली जाती है, उसको हम सादी भाषा में, इलेक्ट्रिक की भाषा में आर्थिंग कहते हैं। जब आप बिना चप्पल के, अगर आप सॉक्स भी नहीं पहनते हैं और आप जमीन से जुड़ते हैं तो आपका आर्थिंग हो जाता है, लेकिन आप सदा बूट में होते हैं, सदा चप्पल में होते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी निकलना बंद हो जाती है, फिर आप चिड़चिड़ हो जाते हो, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, बहुत सारा पसीना आता है आपको और आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती रहती है। आप प्रधानमंत्री भी अगर हैं तो आपने 2 घंटा जमीन के साथ जुड़ना है, ये एक महामंत्र याद रखना। अभी सुन लो आप अनुलोम विलोम कैसे करें। दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका बंद कर दे और इस प्रकार की मुद्रा बनाए आप और ऐसी पकड़ बना ले। फिर गहरी गहरी सांस भरे लेफ्ट वाली बंद करके राइट से बाहर, फिर राइट से ले, राइट बंद कर लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से फिर से गहरी सांस भरे, लेफ्ट वाली नासिका बंद करके राइट से बाहर, राइट से फिर से भरे, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर, ऐसा आप 30 वृत्तों तक करें, फिर 15-20 सेकंड आराम करें, फिर 30 वृत्त करें, फिर 30 वृत्त करें। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। चंद्र नाड़ी से हम इसलिए आरंभ करते हैं कि हम भारत में रहते हैं और भारत जो है वो समशीतोष्ण कटिबंध में है। आपने हमेशा चंद्र नाड़ी से ये प्राणायाम करना है, लेफ्ट से प्राणायाम करना है। अगर आप कभी हिमालय की ओर गए, लेस देन 10 डिग्री लेस देन 5 डिग्री के टेम्परेचर में गए, तो आप इसका क्रम उलट कर देंगे। आप लेफ्ट अंगूठे से लेफ्ट नासिका बंद करके राइट से गहरी सांस भर के ये क्रम करेंगे। अगर आपने समझो आप जहां अतिशय गर्मी है वहां रहते हो और आपने गलत किया, समझो लेफ्ट साइड बंद करके राइट से शुरू किया, तो आपके शरीर में इतना पसीना हो जाएगा, आपके शरीर में तेजोगर्मी बढ़ जाएगी, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उलट क्रम किया है। इसलिए याद रखे हमेशा राइट हैंड से ही करें, राइट हैंड के अंगूठ से राइट नोस्टर बंद करके लेफ्ट नासिका से गहरी सांस भरते हुए इसका आरंभ करेंगे। 30 वृत्तों का एक प्राणायाम होगा और आप इसके बाद 10 सेकंड आराम करेंगे, फिर 30, फिर 30, ऐसे 5, 7, 10 वृत्तों तक कर सकते हैं। इससे पैरालिसिस वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी परिणाम मिलते हैं, इससे एकाग्रता बहुत बढ़ती है, इससे चेहरा योगी जैसा लगता है, चेहरे पर बिल्कुल चमक आ जाती है, चेहरे की ऑरा और ऊर्जा बढ़ जाती है, बाल नए आ जाते हैं क्योंकि सारी कैपिलरीज हमारी रिपेयर हो जाती है। जिनको पेशाब लगते ही भागना पड़ता है उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिनके शरीर में बहुत सारे विष्ट तत्व है उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिनको फोड़े फुंसियां होती रहती है उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिनका पाचन वीक है उनका पाचन तेज हो जाएगा, जिनको ऑक्सीजन की वजह से कम होने की वजह से जितने प्रॉब्लम रहते हैं उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा। याद रहे ये प्राणायाम भी सुबह ही करें। ये प्राणायाम आप सुबह करेंगे, 3 दिन समझो अंधकार में करेंगे, सूर्योदय के पहले करेंगे, तो O3 भी बैलेंस हो जाएगा, ओजोन जिसको कहते हैं, और सूर्योदय के साथ साथ करेंगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा, जिसको ऑक्सीजन माना O2 कहते हैं। तो ऐसे बांट ले, समझो आपको चमड़ी के प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो आप अंधकार में भी कर सकते हैं। एक और चीज बता देता हूं आपको, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है ना, तो हमारे हृदय से निकलने वाले हर बोल, हमारे हृदय से निकलने वाले हर प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है और वो बोल वेदक हो जाते हैं, माना उसमें परिणाम मिलता है। हम आशीर्वाद के रूप में किसी को अगर शुभेच्छा देते हैं, शुभ भावना देते हैं, तो वो सफल हो जाती है। इसलिए अनुलोम विलोम अवश्य करें। इसके बारे में अगर आपको कुछ पृच्छा करनी है निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। अस्तु, मैं इस पूरे विषय का श्रेय भगवान शिव के चरणों में को अर्पित करता हूं और प्रिय भारत माता को मैं प्रणाम करके आज के विषय के समापन की आज्ञा चाहता हूं। अस्तु, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद हरीश वैद्य जी का, जो हमारे साथ जुड़े थे सीधे बड़ौदा से और उन्होंने आज प्राणायाम में अनुलोम विलोम आज सिखाया। ये एक अलग प्रकार का प्राणायाम है। हर दिन जब हम कुछ नया सीखते हैं दोस्तों, तो उन्हें तुरंत कर लेने से बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आप साथ साथ करना शुरू करें और फिर बाद में जब आप समय निकालकर योगासन के लिए समय निर्धारित करते हैं तो उस समय पर करने से आप ज्यादा बेनिफिट्स तो ले ही पाते हैं। बट सीख लेना टीचर के साथ साथ बैठकर कर लेने से हमेशा ही चीजें बहुत आसान रहती हैं। चलिए आज के विषय पर चलते हैं, यानी प्राणायाम के विषय पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे और आज भी प्राणायाम के विषयों पर कुछ जानकारी हासिल करते हैं और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आपके पास कोई भी मन में प्रश्न है प्राणायाम से संबंधित, तो उन प्रश्नों को आप अभी के भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इन कमेंट्स से मैं इन प्रश्नों को हमारे एक्सपर्ट से पूछूंगा। हमारे साथ आज योगा एक्सपर्ट के रूप में शीतल भारती जी जुड़े हैं, जो सीधे जम्मू से आज हमारे साथ जुड़ेंगे। योगा एक्सपर्ट होने के नाते वो इस विषय पर हमें बहुत ही गहरी जानकारी भी देंगी। प्राणायामों के बारे में हम कुछ मिनट बोध सुनेंगे उनसे और फिर उसके बाद मैं आपके प्रश्नों को उनके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना शुरू कर सकते हैं, तो आपके प्रश्नों को सीधे ही मैं भारती जी तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए सीधे चलते हैं, भारती जी के साथ जुड़ते हैं जम्मू से, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं आज के बोध के लिए। नमस्कार शीतल जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। शीतल जी का माइक्रोफोन म्यूट पे है, मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करता हूँ उसे अनम्यूट कर दें। जी शीतल जी,
जी नमस्कार।
आज नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लोग हर दिन प्राणायाम भी सीख रहे हैं, योगासन भी सीख रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे दोस्त आपसे प्रश्न भी पूछना चाहेंगे। उन प्रश्नों को हमने कहा है कि वो कमेंट्स के सेक्शन में लिख दें, फेसबुक या यूट्यूब जहां पर भी वो देख रहे हैं वहां से हम इन प्रश्नों को आपके लिए लेंगे। बट इससे पहले कि हम प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ें, हर दिन की तरह आज भी हम प्राणायाम के बारे में कुछ आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ बोध आप देना चाहते हैं हमारे साथियों को, ये बता सकते हैं तो आप उसके बारे में कुछ बताएं कि प्राणायाम किनको करना चाहिए, क्या एज ग्रुप होना चाहिए, जिनको एग्जिस्टिंग बीमारियां होती हैं उनमें से क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
जरूर, कल हमने बात करी थी प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम शब्द का अर्थ समझा था, उसके डीपर लेवल पे क्या इफेक्ट होता है उसका हमारी बॉडी के ऊपर, उसके बारे में हमने सीखा था। आज हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, समझेंगे कि प्राणायाम का कौन से कोशा में इफेक्ट होता है और क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कि प्राणायाम कौन कर सकते हैं और कैसे करना है, कब करना है, इन सब चीजों के बारे में आज हम विस्तार में बात करेंगे। तो प्राणायाम, जैसे कि कल हमने बात करी थी कि प्राणायाम से क्या होता है, जो हमारी एनर्जी है, जो प्राण है, वो जब हम ब्रीथ करते हैं प्राणायाम में, तो हमारी जो एनर्जी है, प्राण शक्ति जो है, वो इन्फ्लुएंस होती है, इन्फ्लुएंस होके वो फ्लो करती है हमारी नाड़ीज में, जिसको हम एनर्जी चैनल्स कहते हैं। हमारे शरीर में ऐसे तो हजारों नाड़ियां होती हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल टेक्स्ट जो है हमारे, बट उनमें 72,000 नाड़ीज ऐसी हैं जिनको इम्पोर्टेंट कहा जाता है या जिनके बारे में लिखा गया है हमारे टेक्स्ट में। और उनमें से भी 3 नाड़ियां ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। तो ये 3 नाड़ीज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं जो प्राण है उसको फ्लो करवाने के लिए पूरी बॉडी में। तो ये हो गया प्राणायाम का एक्चुअली डीप, कि हम करते क्या है, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो वो क्या रहा है बॉडी में, तो वो एनर्जी को फ्लो कर रहे हैं, प्राणा को फ्लो कर रहे हैं हमारी जो एनर्जी चैनल्स हैं उनके अंदर। अब उसके बाद अब एक एस्पेक्ट है जिसको समझने की जरूरत है, योगिक फिजियोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन फ्रेमवर्क जो है उसमें 5 बॉडीज की बात की जाती है, 5 शेथ्स बोल सकते हैं, 5 कोशास बोल सकते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें पहला कोशा आता है अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा हमारा जो ये फूड और मटेरियल बॉडी है जिसको हम फिजिकल आईज से देख सकते हैं, ये होता है अन्नमय कोशा। दूसरा होता है हमारा मनोमय कोशा। मनोमय कोशा होता है मेंटल बॉडी। थर्ड होता है हमारा प्राणमय कोशा, जो होती है हमारी ये एनर्जी बॉडी जो होती है। और फोर्थ होती है विज्ञानमय कोशा, हायर मेंटल बॉडी। और लास्ट होती है आनंदमय कोशा, ब्लिस बॉडी। तो अब प्राणायाम का इफेक्ट किस पे है, हम सिर्फ प्राणमय कोशा की बात करेंगे क्योंकि बाकी कोशास की अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं। तो प्राणायामा का सीधा संबंध है प्राणमय कोशा से. सो प्राणमय कोशा है एनर्जी बॉडी. सो एनर्जी बॉडी वहां पे जहां पे पूरी एनर्जी आपकी फ्लो करती है. अब जब हम प्राणायामा करते हैं तो जो भी वहां पे इम्बैलेंसेस होती हैं, एनर्जी की ब्लॉकेजेस होती हैं, वो सब क्लियर होती हैं. जब हम ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो प्राणमय कोशा होती है उसमें जो भी इम्बैलेंसेस ब्लॉकेजेस होती हैं वो सब क्लियर होती हैं. तो उसका इफेक्ट हो रहा है सीधे हमारे प्राणमय कोशा में. अब हम प्राणा का इफेक्ट जो है वो हमारे लाइफस्टाइल के साथ बहुत जुड़ा हुआ है. हम लाइफस्टाइल में हम क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारा वर्क क्या है, हमारी हैबिट्स क्या है, वो सब का इफेक्ट पड़ता है प्राणा के लेवल पे. और उसके साथ साथ हमारे इमोशंस का इफेक्ट, हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उसका इफेक्ट भी पड़ता है प्राणास के ऊपर, मतलब प्राणमय कोशा के ऊपर, जो हमारी एनर्जी बॉडी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है. तो एनर्जी का लिंक हो गया माइंड के साथ. अब आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि आपके थॉट्स एंड इमोशंस हमारी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं कहीं ना कहीं. तो उनको फ्लो करने के लिए कई बार हम बातों को छोड़ नहीं पाते हैं तो इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, जो प्राणा है वो ब्लॉक हो जाता है. उसके लिए प्राणायाम जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो भी प्राणा जो वहां पे ब्लॉक हुआ है उसको खोलता है, वहां पे बैलेंस क्रिएट करता है और रेगुलेट करता है और एक्टिवेट करता है हमारी एनर्जी वाली जो नाड़ीज हैं उनको एक्टिवेट करता है. इसीलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है. अब बात की जाए कि प्राणायाम कौन कर सकता है. प्राणायाम हर कोई कर सकता है. आजकल के समय में जैसा हमारा जीवन चल रहा है वहां पे आप पाएंगे कि हर किसी को किसी न किसी प्रकार की समस्या है, शारीरिक समस्या होती है. वो क्यों होती है, योगा में कहा जाता है आदि ज व्याधि, मीन्स साइकोसोमैटिक डिजीजेस. जो भी डिजीजेस हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रही है उनका उत्पन्न, उनकी उत्पत्ति जो है वो माइंड में होती है. सो साइकोसोमैटिक मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इमोशंस जिसका असर आपको बॉडी में दिखाई दे रहा है. तो इसीलिए जब हमारे इमोशंस में कोई चेंज आता है तो वो वहां पे दिखता है और उसको ठीक करने के लिए वी यूज प्राणायाम. उन ब्लॉकेजेस को ठीक करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए हम प्राणायाम का यूज करते हैं, अपने इमोशनल लेवल पे, अपने माइंड के लेवल पे जाके चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं. आपको जब भी हमारा कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होता है, इम्बैलेंस होता है तो हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाती है. वैसे डिटेल में बात की जाए तो हमारे प्राणास की जो हम बात कर रहे हैं, प्राणास भी आगे पांच प्राणास कहा जाता है. अपाना प्राणा, अपाना व्याना समाना उदाना, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी वहां पे फ्लो करते हैं और वहां के जो ऑर्गन्स हैं वहां काम करते हैं. जैसे कि प्राणा जो है वो हमारे चेस्ट रीजन में, हमारे हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है. तो अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है तो यानी कि आपका जो प्राणिक फ्लो जो है वो रुका हुआ है. यहाँ पे प्राणिक फ्लो इज नॉट कॉस्मिक फ्लो, जो कॉस्मिक प्राणा है उसकी बात नहीं हो रही है. इट जस्ट एंड फ्लो, एक एनर्जी की फ्लो की बात हो रही है. तो वहां पे ब्लॉकेज हो सकता है जिसकी वजह से आपको हार्ट की समस्या हो सकती है या रेस्पिरेटरी सिस्टम में एस्थमा की कोई प्रॉब्लम हो सकती है. और अपाना की बात करें, अपाना हमारे लोअर पार्ट में होता है, दैट इज बिलो द नेवल, हमारे इंटेस्टाइन्स और किडनीज को चलाता है. तो अगर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देयर इज समथिंग रिलेटेड टू अपाना. सो अपाना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्राणा विच इज गोइंग टू हील बाय प्राणायामा. सो एक बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश की जाए तो अगर हमारे कोई भी ऑर्गन में दिक्कत आ रही है तो मतलब उस ऑर्गन को जो प्राणा चला रहा है, पांच नाम दिए गए हैं डिफरेंट प्राणास को, वो जो चला रहा है उनमें से किसी प्राणा में कोई प्रॉब्लम आई है, वो किसी तरीके से फ्लो नहीं हो रहा है, कोई ब्लॉकेज आई है वहां पे, हमें उसको ठीक करना है प्राणायाम के माध्यम से. अपाना की बात हो गई, अब हम बात करेंगे उदाना की. उदाना होता है हमारे थ्रॉट में, थ्रॉट सेंटर में, दैट इज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड टू द ब्रेन, माइंड से रिलेटेड होता है, स्पेसिफिकली ब्रेन से रिलेटेड होता है. ब्रेन की जो भी एक्टिविटीज होती है वो अपवर्ड फ्लो करता है उदाना. उसके बाद आ गया हमारा समाना, समाना इज लोकेटेड बिटवीन द हार्ट एंड द नेवल, उस रीजन में होता है, दैट इज रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एब्जॉर्प्शन हो गई, एसिमिलेशन हो गई, जो भी हम खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो एनर्जी, जो प्राणा यूज होता है उसको हम बोलते हैं समाना. अब व्याना, व्याना एक्चुअली पूरी बॉडी में रोटेट करता है, पूरी बॉडी में हमारा जो भी सर्कुलेशन होती है किसी भी तरीके से, जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं, ग्लूकोज फ्लो करता है, वो सब किसकी वजह से करता है, बिकॉज ऑफ व्याना. एंड व्याना कोऑर्डिनेट्स बिटवीन ऑल द पंच प्राणास, सारे प्राणास को कोऑर्डिनेट करता है व्याना. तो यहाँ पे हमने बेसिक से बहुत सुपरफिशियल लेवल पे समझा है, ज्यादा डीप में हमने नहीं गए हैं. आपको आइडिया हो जाए कि प्राणास का क्या इफेक्ट है बॉडी ऑर्गन्स पे, क्योंकि अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं बहुत जरूरी है कि आप समझे कि उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि कई बार हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं पता होती है तो हम कहते हैं कि क्यों करना है, क्या जरूरत है, क्या इफेक्ट हो रहा है, ये तो बूढ़ों के लिए है, हमें क्या जरूरत है. बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें प्राणायाम को अपनी बॉडी का, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गन्स में हो जाती हैं ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ एनी एनर्जी, वो हम क्लियर कर सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें. तो ये पंच प्राणास इस तरीके से काम करते हैं. तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि हर किसी को किसी ना किसी प्रकार की समस्या है आज, विच मीन्स किसी ना किसी प्राणा में कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस हो सकती है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो सकती है, तो उसका इफेक्ट हमें बाहर दिखाई देता है. आप डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज में एक तो इफेक्ट है, दिस इज डायबिटीज साइकोसोमैटिक डिजीज बोली जाती है, जो कि आपके जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वहां से उत्पन्न होती है. और उसका इफेक्ट क्या है, पेंक्रियास किससे रिलेटेड होती है, समाना से. तो समाना जब आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है या कम है, वहां फ्लो नहीं हो रहा, पेंक्रियास में प्रॉपर समाना नहीं पहुंच रहा है, तो आपको डायबिटीज की शिकायत हो सकती है, इंसुलिन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो सकता है. और हर चीज इंटर रिलेटेड है, सेम वे कोई इशू व्याना में भी हो सकता है कि वो प्रॉपरली ग्लूकोज को नहीं लेके जा पा रहा होगा. सो देर आर सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व. सो ये हमें समझना होगा कि आज अगर फिजिकल लेवल पे हमें कोई बीमारी दिख रही है, कोई चीज डायग्नोज हो रही है, तो बहुत डीपर लेवल पे एक एनर्जी सिस्टम, जो हमारी एनर्जी बॉडी है जिसकी हमने बात की, प्राणमय कोशा की बात की जो हमने, उसका रोल बहुत जरूरी है. बाकी सारे प्राणमय कोशा को आप देख नहीं सकते, वो जो हमने बोला 72,000 नाड़ी, वो भी हमें दिखती नहीं है, परंतु उनका इफेक्ट जो है वो हमें दिखाई देता है, क्योंकि बॉडी इज रनिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग, तो उसका इफेक्ट है हमारी बॉडी पे. तो हमें ये चीज समझनी है. तो आज अगर आपको हर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो इट इज रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड टू डू प्राणायाम. मेडिसिन हम बाहर से लेते हैं, दैट विल ओनली सप्रेस द थिंग. आपको डीपर लेवल पे अगर चीजों को ठीक करना है, तो आप प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाएं, उसे करें, तो आपको किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी. अब प्राणायाम कब करें, प्राणायाम हमेशा आपको सुबह के वक्त करना होता है, खुली हवा में आप बैठें और प्राणायाम का अभ्यास करें जी. अभी हम बात कर लेते हैं श्रीनिधि भाई से, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो हम वो ले सकते हैं रिलेटेड टू प्राणायाम की, कब करना है, क्या करना है, हम बात कर सकते हैं उसमें
जी. बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि थियोरी में हमें कितनी सारी चीजें नहीं पता होती, बट ये सारी चीजें समझने से ये पता चलता है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर सकते हैं. प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने बॉडी को रेगुलेट करते हैं. पहले हमें थियोरी समझ में भी नहीं आता हो, मगर अगर हम चीजों को करते रहेंगे फिर उसके बेनिफिट्स हमें पता चलते हैं. कुछ दोस्त जो हमारे प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अभी भी पूछ सकते हैं. अपने प्रश्नों को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में से हम प्रश्नों को लेकर शीतल जी से उन प्रश्नों का उत्तर लेंगे. हमारे साथ अनु अरोरा जी हैं जो YouTube पर कार्यक्रम देख रहे हैं. वो कहते हैं कि लीवर के प्रॉब्लम हो को दूर करने के लिए और उसे हेल्दी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये पूछते हैं अनु अरोरा.
जी अनु अरोरा जी, लीवर की अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो सबसे पहले आप अपनी डाइट को ठीक करें, क्योंकि लीवर में बहुत फैटी लीवर की समस्या आज देख रहे हैं. दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट यू आर ईटिंग. आप क्या खा रहे हैं उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है. तो आप जो भी आप ज्यादा ऑयली चीजें हैं उनको खाना कम करें. सबसे पहले अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा फाइबर इनटेक रखें, वाटर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और उसके बाद आप जो है प्राणायामा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति. ये प्राणायामा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. मॉर्निंग में आप अच्छी खुली हवा में बैठकर आप कपालभाति का अभ्यास करें और अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, आपको बहुत लाभ होगा.
जी बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी. मैं आशा करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो. कुछ और दोस्तों के प्रश्नों की तरफ हम रुख करते हैं. जैसे एक प्रश्न जो अक्सर सुनने को मिलता है, उसमें से एक प्रश्न मिलता जुलता कृष्णा जी पूछते हैं कि अगर किसी को बीपी है नहीं, हाई बीपी है या समझे, क्षमा करें, कृष्णा जी पूछते हैं कि अगर किसी को हाई बीपी है तो ऐसे में उनको कौन सा प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए और कौन सा प्राणायाम उनके लिए अच्छा है, ऐसा कृष्णा जी पूछते हैं.
जी कृष्णा जी, हाई बीपी के लिए आपको जो भी प्राणायामास है जहाँ पे हम फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं वो कम करनी है, क्योंकि उससे हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है. तो आप भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, कपालभाति ना करें. आप ये कर सकते हैं अपना अनुलोम विलोम करें, फुल योगिक ब्रीदिंग करें, उज्जयी ब्रीदिंग आप कर सकते हैं. ये सब प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम सेफ है. आप जहां पे फोर्सफुली ब्रीद करना है वो आप अवॉइड करें, बाकी जहां पे स्लो ब्रीदिंग है वो आप कर सकते हैं.
बिल्कुल, जैसे आज हमने अनुलोम विलोम सीखा है, हरीश वैद्य जी हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे शुरुआत में, तो वो करना इनके लिए सूट करेगा.
जी जी बिल्कुल, वो काफी अच्छा रहेगा इनके लिए.
जी मौली शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं. अस्थमा के लिए कौन सा प्राणायाम करें और कितने टाइम के लिए करना चाहिए, ये पूछते हैं मौली.
जी मौली जी को सबसे बेस्ट प्राणायाम अस्थमा के लिए है अनुलोम विलोम, क्योंकि वो जो बैलेंस करता है दैट इज द बैलेंसिंग प्राणायाम एंड मोस्ट सेफेस्ट प्राणायाम आप करें. उसमें आपका जो है प्रॉपर एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि आपके लंग्स को, लिवर को हेल्दी बनाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत बेहतर करेगा. तो आप अनुलोम विलोम करें. ड्यूरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं 20 राउंड से शुरू करें. एक साइकिल जो होता है, जैसे कि आज हमने शुरुआत में सीखा, एक साइकिल जब हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, एक्सहेल करते हैं लेफ्ट से, देन लेफ्ट से इनहेल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट से एक्सहेल करते हैं, राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं. इसको बोलते हैं वन राउंड और एक साइकिल बोल सकते हो आप. तो आप इस तरह के आप पहले 20 साइकिल से शुरुआत करें. मिनिमम 20 साइकिल्स आपको करने पड़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं. आप 5 मिनट से इंक्रीज करके 10-15 मिनट तक इसे आराम से कर सकते हैं, आपको काफी फायदा होगा.
बिल्कुल, प्राणायाम करने के बाद कितनी देर तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, ये भी एक प्रश्न है जो बहुत सारे साथियों के मन में होगा. ये भी मौली ऐड कर रहे हैं, तो आप उनको गाइड करें.
जी प्राणायाम के बाद आप कोशिश करें थोड़ी देर के लिए आप शवासन में लेटे, इंस्टेंटली आपको कुछ नहीं खाना है. आपको 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर जितना आपके पास मिनिमम, आप 15 मिनट्स का गैप रखें. अगर ज्यादा समय है तो हाफ एन आवर का गैप रखें, क्योंकि लेट द एनर्जी वर्क टू द सिस्टम, उसको काम करने दें थोड़ी देर, क्योंकि हम थोड़ा सा हमने अभी कुछ किया बॉडी में कुछ चेंज के लिए, उस एनर्जी को डाइवर्ट किया ठीक करने के लिए, उसे स्पेसिफिक ऑर्गन में भेजा, एंड फिर दोबारा से अगर हमने कुछ खा लिया तो फिर वो एनर्जी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी उसको खाने की. इसीलिए वी हैव टू अवॉइड इट फॉर सम टाइम. सो आप 15 to half an hour का समय दीजिए, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, नॉर्मल उसको काम करने दीजिए, एंड उसके बाद आप खा सकते हैं.
जी एक और साथी है रिया, वो पूछते हैं कि कितने देर के लिए प्राणायाम करना चाहिए, जब हम प्राणायाम करते हैं तो कितनी देर करना चाहिए.
प्राणायाम अगर आप बहुत सारे प्राणायाम कर रहे हैं, लाइक आप कपालभाति भी कर रहे हैं, आप अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं, आप उज्जयी भी कर रहे हैं, आप बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप ओवरऑल सब प्राणायामास को मिक्स करके मैक्सिमम हाफ एन आवर इज इनफ, और अगर आप उससे कम कर रहे हैं तो 15 मिनट्स इनफ है. बट हमारे टेक्स्ट में भी ये काफी ज्यादा रिकमेंडेड है कि आप एक प्राणायाम चूज करिए. वैसे सबके लिए नहीं कहा जाता, आज सबकी बॉडी की जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है. सो आप अपनी बॉडी के हिसाब से चूज करेंगे विच वन यू हैव टू ऑप्ट फॉर. तो एक प्राणायाम चूज करें, कहा जाता है कि एक प्राणायाम आप लाइफ टाइम करेंगे तो भी आपको फायदा होगा. अलग अलग प्राणायाम, ज्यादा प्राणायाम करने से फर्क नहीं है, कंसिस्टेंसी और एक प्राणायाम को करते रहने से आपको फायदा होगा. तो जो भी आपको लगता है कि जो प्राणायाम आपके लिए सही है, आपकी जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आप उसको चूज करके फिर आप उसको कंटिन्यूसली कर सकते हैं.
हमारे साथ एक और साथी हैं, यूट्यूब से इशिता जी जुड़े हैं, और इशिता जी प्रश्न पूछते हैं कि अनुलोम विलोम शुरू करते समय हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही क्यों शुरू करना चाहिए, ये प्रश्न पूछते हैं.
जी, जैसे आज बात करी हमने जब अनुलोम विलोम सीखा, वहां पे भी हरीश भाई ने बताया था कि हम ऐसे कंडीशन में रहते हैं, इंडिया एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक जो टेम्परेचर है वो इस तरह का है कि वहां पे हमें जो लेफ्ट नाड़ी है, जो हमारी चंद्र नाड़ी है, वहां से शुरुआत करनी है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर और जो भी एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से. हमारे शास्त्रों में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इंडिया के जो भी लोग हैं उनको हमेशा स्टार्ट करना है प्राणायाम लेफ्ट से. जो भी आपकी लेफ्ट से, जो भी हमारे लेफ्ट मतलब पूल जो चंद्र नाड़ी है, जो भी ठंडक है, पहले हम उसको बाहर निकालेंगे और फिर हम फ्लो करेंगे, एक पूरा सिस्टम जो है वो साइकिल उस तरीके से चलाएंगे. तो हम एकदम से हीट को नहीं बढ़ाएंगे. अगर हम लेफ्ट राइट से इनहेल करेंगे तो एकदम से हमारी बॉडी में हीट बढ़ जाती है, क्योंकि राइट साइड इज फॉर द सन एंड लेफ्ट इज फॉर द मून. तो बैलेंस करना है तो पहले हम ठंडक को खत्म करेंगे और उसके बाद हम बैलेंस क्रिएट करेंगे.
जी, प्रीति गर्ग जी पूछते हैं कि आप एक और बार समझा दीजिएगा, एक बार डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझा दें कि कैसे हम अनुलोम विलोम करें, ऐसा पूछते हैं प्रीति
जी. तो आपको सबसे पहले इस मुद्रा का यूज करना है. आप फर्स्ट टू फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको आप स्ट्रेट रखेंगे. आपकी रिंग फिंगर और जो लिटिल फिंगर है उसको बेंड कर लेंगे. यहाँ पे हम थंब का और इन टू फिंगर्स का यूज करेंगे अपने नॉस्ट्रिल्स को ओपन एंड क्लोज करने के लिए. सबसे पहले आप दोनों फिंगर्स को आप चाहें तो अपने आज्ञा चक्र पे रख सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप नॉर्मल रख के अपने राइट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज करेंगे. एक्सेल करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड से एक्सेल करेंगे, देन लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे, क्लोज करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, एक्सेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से. अभी लेफ्ट राइट साइड से इनहेल करेंगे, क्लोज करेंगे राइट लेफ्ट से इनहेल एक्सेल करेंगे. दोबारा से लेफ्ट से इनहेल करेंगे, क्लोज करेंगे एक्सेल थ्रू द राइट, इनहेल थ्रू द राइट, क्लोज एक्सेल थ्रू द लेफ्ट, इनहेल थ्रू द लेफ्ट, क्लोज एक्सेल थ्रू द राइट, इनहेल थ्रू द राइट, क्लोज एक्सेल थ्रू द लेफ्ट. सो ये हुए हमारे थ्री साइकिल. तो इस तरीके से आप कंटिन्यूसली करें. कोई चेहरे पे आपको किसी भी प्रकार का तनाव क्रिएट नहीं करना है. आपकी ब्रेथ जो है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए. बाकी प्राणायाम में आवाज आ सकती है क्योंकि आप फोर्सफुल एक्सहेल कर रहे हैं या फोर्सफुल इनहेल कर रहे हैं, परंतु खास करके अनुलोम विलोम में इतनी साइलेंट ब्रीदिंग होनी चाहिए कि आपको खुद को भी ना पता चले कि आप ब्रीद कर रहे हैं. इतनी साइलेंटली आपको ब्रीद करना है और बहुत स्मूथली, रुक रुक के कि थोड़ी सी सांस ली फिर बीच में आप रुके गए, ऐसा नहीं, बहुत स्मूथली. और सबसे इम्पोर्टेंट रूल प्राणायाम में होता है कि द एक्सहेलेशन शुड बी लॉन्गर देन द इनहेलेशन. जो हम एक्सेल करते हैं वो इनहेलेशन से ज्यादा लंबा होना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है.
जी, एक और साथी हैं नम्रता जी, और ये प्रश्न पूछते हैं कि जो डायबिटीज जिनको शिकायत होती है वो लोग, उनके लिए बेस्ट प्राणायाम क्या है?
जी, जिनको डायबिटीज की शिकायत है उनके लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम एक कपालभाति और दूसरा भस्त्रिका। ये दोनों प्राणायाम आपको रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए, ये आपके लिए काफी फायदेमंद है।
हालांकि दोस्तों हमने अभी तक कपालभाति और भस्त्रिका पर डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं देखे हैं, कल परसों में हम इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। जो चीजें आपने सीखी हैं उनसे आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। शीतल जी, आज वक्त इतना ही इजाजत दे रहा है, हालांकि बहुत सारे दोस्तों ने प्रश्न पूछा है, अगर आज इतने ही प्रश्नों को हम ले पाएंगे, मगर आज आप खास हमारे साथ जुड़े सीधे जम्मू से, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और आपसे फिर बातचीत और प्रश्नोत्तर भी हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे शीतल जी जिनसे हम सीधे जुड़े थे, और ये योग एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने आज प्राणायामों के विषयों पर हमें बहुत ज्यादा जानकारी दी, और साथ साथ ये भी बताया कि हमें किस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, और हमारे प्रश्नों के भी उत्तर दिए। आइए कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए हैं, अब हम अगले 5 मिनट के लिए करते हैं राजयोग ध्यान। पतंजलि ने बहुत ही सुंदरता से ये चीज बताया है कि योग करने का उद्देश्य क्या होता है, उसमें सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, अपितु आत्मिक उन्नति भी है, यानी हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी योग एक कारगर उपाय है। तो इसलिए आइए करते हैं मेडिटेशन यानी राजयोग ध्यान कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में।
शांति, आइए चले अपने मन के अंदर एक नई यात्रा पर, अपने आप को सारी बातों से फ्री करके कुछ समय हम अपने आप के साथ व्यतीत करेंगे। अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच, स्वयं को एक चमकता हुआ दिव्य सितारा देखिए, शाइनिंग लाइट, स्पार्कलिंग लाइट। आज का ये दिन अपने आप को सारी पुरानी बातों से, जाने अनजाने में कुछ की हुई गलतियों से स्वयं को मुक्त करने का है। अपने आप को स्वतंत्र अनुभव कीजिए, तन और मन से हल्का, सारे बोझ से मुक्त, एकदम लाइट। अब अपने आप को एक विशाल समुद्र के बीच देखिए, बस मैं और ये विशाल सागर, और सागर की ठंडी ठंडी लहरें। अपने मन से इस विशाल सागर को निहारिए और चिंतन कीजिए, जैसे ये विशाल सागर सारे कचरे को अपने अंदर समाते हुए भी बदले में हमें रतन ही देता है। यदि सागर में हम कुछ कचरा भी डालें तो हमें मोतियों की ही प्राप्ति होती है। ऐसे ही अपने मन का सारा बोझ, पुरानी बातें, अपनी गलतियां, दूसरों द्वारा मिला हुआ दुख, धोखा, तकलीफ, जो भी मन में है उस सागर में बहा दें और महसूस कीजिए कि अब मेरा मन एकदम खाली है। मेरे मन के अंदर सिर्फ क्षमा भाव ही क्षमा भाव है, प्रेम ही प्रेम है। मेरा मन सबके प्रति रहम भाव से, क्षमा भाव से भरपूर है। अब मैं संपूर्ण स्वच्छ हूं इस जीवन की यात्रा में, जाने अनजाने में अपनों परायों से कहीं ना कहीं दुख मिला, कुछ कष्ट भी अनुभव हुए। कईयों ने हमारी उन्नति में बाधा भी डाली, पर अब मुझे उन सबको माफ कर देना है, क्योंकि दूसरों को माफ करना स्वयं को एक आजाद पंछी अनुभव करना है। अब अपनी की हुई गलतियों को भी उस सागर में बहा दें, स्वयं को भी माफ कर दें। क्षमा करना और क्षमा ले लेना ही मेरे सुखद जीवन का आधार है। अब अपने आप को सूर्य के समान रोशनी से भरपूर अनुभव कीजिए, जैसे सूर्य सारे बैक्टीरिया, सारे जर्म्स को अपने तेज से समाप्त कर देता है, ऐसे ही मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, तेजोमय प्रकाश पुंज अपने अंदर की सारी बातों को समाप्त कर रही हूं। अब अपने ऊपर परमात्मा के दिव्य प्रकाश को आने दे, परमात्मा की क्षमा की किरणों को अपने ऊपर देखे। अब मैं आत्मा सारी बातों से, दुख से एकदम मुक्त हूं, जैसे परमात्मा मेरी भूलों को क्षमा करते हैं और मेरे कल्याण का ही सोचते हैं। ऐसे ही मेरा मन भी सबके लिए क्षमाशील बन गया है। मेरा मन प्रेम से भरपूर है। मेरा मन संपूर्ण स्वतंत्र है। अपने आप को उन किरणों के नीचे देखे, और मन ही मन जिनसे भी दुख मिला हो उन सभी को क्षमा कर दीजिए। ऐ मेरे प्यारे आत्मा रूपी भाई बहनों, जाने अनजाने में यदि मुझसे कुछ भूल हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। अब मैं आगे के लिए सदा ही सभी को सुख देने का ही प्रयास करूंगी। मन ही मन ये मंत्र दोहराइए, क्षमा ही मेरे जीवन की सुंदरता है, मेरी खुशी का आधार है। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद राधा तीजी जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर मेडिटेशन अभ्यास करवाया। हम अक्सर देखते हैं, कभी कभार हम अपने आप को माफ नहीं करते, कभी कभार सामने वाला जो गलती करके चला गया है उसके प्रति उसकी गलती को पकड़ के रखने की हमारी आदत एक गांठ सी बना देती है और इसकी वजह से रिश्ते आसान नहीं रहते। अक्सर हम कहते भी हैं कि रिश्तों में एक असहजता आने लगती है। ऐसे समय के लिए क्या किया जाना चाहिए? अभ्यास राजयोग का ऐसे अलग अलग विषयों पर करने से मन हमारा हल्का होता जाता है, परमात्मा से संबंध जोड़ने से हम खुद भी हल्के होते हैं और सभी को माफ करते हैं और हमें भी बदले में माफी मिल जाती है। आशा करते हैं कि आज की मेडिटेशन से आपको भी ऐसी अनुभूति हुई होगी। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े इस 21 दिवसीय योगा चैलेंज में, कल फिर एक नए योगासन, एक नए विषय पर चर्चा और फिर कल एक नए विषय पर ध्यान के साथ हाजिर होंगे। तो कल जुड़ना ना भूलें हमारे साथ। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो अगर आप कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं, फीडबैक लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे लिखना न भूलें और हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो उसे हम कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। आज आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी और बस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बस एक हफ्ता ही तो दूर है, तो तब तक हम सब अपने आप को तैयार करने और संपूर्ण योग को सीखें। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार, ओम शांति।